आरव मुंबई से वापस आ चुका था। जब वो घर पहुंचा तो आयु रूम में नहीं थी। आरव काफी घबरा गया था। बाहर बारिश भी हो रही थी और आयु बिना बताए घर से गई थी। उसका मोबाइल भी उसके साथ नहीं था। आरव अपनी पूरी फैमिली के साथ आयु को ढूंढने के लिए जा रहा था। वो लोग गेट के पास पहुंचे ही थे कि तभी आयु घर आ गई थी। आरव को देखते ही आयु दौड़कर उसके गले लग गई और रोने लगी। आरव कुछ पूछ पाता उससे पहले आयु बेहोश हो गई थी। उसने महसूस किया आयु के तेज बुखार है। आरव ने जल्दी से आयु को अपनी बाहों में उठाया और अंदर की तरफ जाते हुए तेज आवाज में बोला, आर्या, इसे बहुत तेज फीवर है, प्लीज चेक करो ना, क्या हो गया है? ये बार बार बेहोश क्यों हो जाती है? कहीं इसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वो सभी अब आयु के इर्द गिर्द खड़े थे और आर्या आयु का चेकअप कर रहा था। उसने आरव से कहा, बारिश में भीगने की वजह से इन्हें कोल्ड हो गया है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। ये बार बार बेहोश होती है तो कल आप उनके सारे टेस्ट करवा लीजिएगा। बोलते हुए उसकी आवाज में भी उदासी साफ जाहिर हो रही थी। कहीं ना कहीं आयु की इस हालत का जिम्मेदार वो खुद को समझ रहा था। आरव ने उसकी बात पर हामी भरी। आर्या ने आयु को इंजेक्शन दे दिया था। उसने फिर आरव से कहा, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा, तब इन्हें हम खाना खिला देंगे। आरव ने उसकी बात पर हामी भरी। आरव के आगे उस वक्त कोई कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि वो चेहरे से ही परेशान लग रहा था। तभी अचानक साक्षी उसके पास आई और आरव के कंधे पर हाथ रखकर बोली, दूसरों को परेशान करने वाला आज खुद परेशान हो रहा है, कुछ नहीं होगा इसे। सोचो, मौत भी तुम दोनों को जुदा नहीं कर पाई, तो एक छोटी सी नाराजगी क्या जुदा करेगी? इसे याद नहीं आया है, तभी तुम्हारे साथ थोड़ा रूढ़ है। टाइम दो, बाद में सब ठीक हो जाएगा। उन सबको यही लग रहा था आयु आरव से नाराजगी के चलते घर छोड़कर गई थी। आरव ने उसकी बात पर हामी भरी। आरव को आयु के पास छोड़कर वो सब बाहर आ चुके थे। बाहर आते ही अयान ने कबीर से कहा, मैंने भाई को इस कदर लाचार और मजबूर कभी नहीं देखा जितना आज आयु के लिए वो महसूस कर रहे थे। वो इतना वीक कैसे हो सकते हैं? प्यार ही सबकी सबसे बड़ी कमजोरी और ताकत होती है। जब आप एक बार किसी को खो देते हो तब उसकी कीमत और अच्छे से समझ आ जाती है। इन्हें आज भी डर है कि कोई आयु को इनसे छीन लेगा, बस यही डर अब इन पर हावी होने लगा है, कबीर ने जवाब दिया। उसने भी महसूस किया था कि आरव की फीलिंग अब आयु के लिए एक्सट्रीम हो चुकी थी। साक्षी इस वक्त किचन में आयु के लिए कुछ हेल्दी बना रही थी, जबकि आर्या वही उनके पास में बैठा था। उनकी बातें सुनकर आर्या ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, मैं डैड की हालत समझ सकता हूँ, मैंने भी वही महसूस किया जो वो फील कर रहे हैं। मुझे लगा कि मैं मॉम को फिर से खो दूंगा, पिछली बार मैं कुछ नहीं कर पाया था, पर इस बार सब मेरी ही गलती है। डैड ने एक छोटा सा काम दिया था और मैं वो भी ठीक से नहीं कर पाया। कबीर ने आर्या के कंधे को सहलाते हुए प्यार से कहा, घबराओ मत, दुश्मन इस बार अनजान नहीं है, हर एक कमजोरी से वाकिफ है हम उसकी। और रही बात आरव सर और आयु की, तो उनके इर्द गिर्द हम एक शील्ड की तरह है, उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। थैंक यू कबीर अंकल, आपने पहले भी डैड के लिए बहुत कुछ किया है और अब भी, आर्या ने थोड़ा इमोशनल होकर कहा। साक्षी ने आर्या की बात सुनी तो वो जल्दी से उसके पास आई और उसे हल्के से हक करके कहा, पिछले 26 सालों में मैंने इस लड़के को इतना इमोशनल होते हुए नहीं देखा जितना ये आज हो रहा है। बेबी, वी आर विद यू, कोई तुमसे तुम्हारे मॉम डैड फिर से नहीं छीनने वाला है। बस हाँ, तुम्हारे डैड का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी किसी पर चिल्ला सकता है, उसकी बात का बुरा मत मानना। मुझे बचपन से आदत है, पहले भी चिल्लाते थे तो अब भी चिल्ला लेंगे, बस मुझे वो मेरे पास चाहिए और कुछ नहीं, आर्या ने जवाब दिया। वो सब एक दूसरे का मूड लाइट करने की कोशिश कर रहे थे, तो वही ऊपर आरव आयु के पास था। उसने आयु का हाथ कस के पकड़ रखा था और एक टक उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। मुझे ना तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है मिसेस खुराना, तुम ना वापस पिछले जन्म वाली हरकतें करने लगी हो। तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है ना, तभी बिना सोचे समझे मुझे छोड़कर जाने वाली थी। तुम बीमार नहीं होती तो अच्छे से खबर लेता, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे दूर जाने के बारे में सोचने की भी? तुम्हें कुछ याद नहीं होगा पर मुझे तो सब पता है ना, इतना प्यार करने के बाद भी कहाँ कमी रह गई जो तुम बेगानों जैसा बिहेवियर करने लगी हो। कभी तो करीब आने की जिद करती हो और कभी बिना बताए छोड़कर चली जाती हो। मैं ये नहीं सहने वाला हूँ, मेरे पास ही रहना होगा तुम्हें। तुम नहीं होती हो तो मैं खुद को कमजोर फील करता हूँ। तुम्हें मेरी ताकत बनना है आयु, मेरी कमजोरी नहीं। बहुत बड़ी जंग लड़नी है मुझे, ऐसा लग रहा है कि माहिरा से पहले मैं खुद से लड़ रहा था और अब तुमसे लड़ना पड़ रहा है। प्लीज मेरा साथ दो, ना कि मेरे अगेंस्ट खड़ी रहो। आयु की बेहोशी में भी आरव उससे बातें कर रहा था। बोलते हुए वो थोड़ा इमोशनल हो गया और उसकी आंखों से आंसू का कतरा बहकर आयु की आंखों पर पड़ा। आरव को लगने लगा कि वो खुद को काबू नहीं कर पाएगा और उसकी फीलिंग उस पर हावी होने लगी, तो वो कुछ पल के लिए आयु के पास से उठकर जाने को हुआ। तभी आयु ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरव ने देखा आयु को होश आ गया था। आयु उठकर बैठने की कोशिश करने लगी। तभी आरव हल्के गुस्से में बोला, नहीं उठा जाएगा इस वक्त तुमसे, और चुपचाप लेटी रहो। अगली बार मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो बांध कर रखना पड़ेगा मुझे तुम्हें, फिर चाहे तुम मेरे बारे में कुछ भी सोचो, आरव बोले जा रहा था, जबकि आयु उसके चेहरे को गौर से देख रही थी। वो जानती थी कि कुछ घंटे पहले उसे बंद आंखों से जो दिखाई दिया था वो कोई सपना नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत थी जिसे आयु अब चाहकर भी नहीं नकार सकती थी। आरव के मना करने के बावजूद आयु जैसे तैसे करके उठी और आरव के सीने से लग गई।
उसने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा। मना किया था ना मैंने तुम्हें अपने पीछे आने से, फिर क्यों आए तुम वहां पर? इतना बोला था कि मेरे बेटे को अकेला मत छोड़ना, पता था तुम्हें तुम मुझे नहीं बचा पाओगे, फिर भी मेरे पीछे आए। बहुत बुरे हो तुम आरफ खुराना, बहुत ज्यादा बुरे, बोलते हुए आयु जोर जोर से रोने लगी। उसकी बातें सुनकर आरफ शॉक हो गया था। आरफ आयु से अलग हुआ और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर बोला, तुम्हें सब कुछ याद आ गया है मिसेस खुराना? आयु ने नामे सिर हिलाकर कहा। इसी बात का तो गुस्सा है मुझे कि सब कुछ याद क्यों नहीं आ जाता। मैंने देखा वो सब जो आखिरी बार हमारे साथ हुआ था, और मेरे साथ। मैं सो रही थी आरफ अपनी आरू के साथ, मैं बाहर आई तो उसके ऊपर पिलर गिर गया, और उसी वक्त वो आयु अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाई थी और जोर जोर से रोने लग गई। वो फिर से आरफ के सीने से लगकर बोली, क्यों हुआ हमारे साथ वो सब आरफ? मेरी आरू की तो कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसे इसकी सजा मिली। वो तो इतनी मासूम सी थी, इतनी छोटी सी, फिर भी उसे मार दिया। हमारे बच्चों को भी मार दिया जो पैदा भी नहीं हुए थे। वो बहुत बुरी है, तुम उसे उसकी सजा जरूर देना। आयु की बात सुनकर आरफ तुरंत उससे अलग हुआ और हैरानी से बोला, तुम्हें तो सब कुछ याद भी नहीं आया था, फिर तुम्हें कैसे पता कि तुम प्रेग्नेंट थी और ट्विंस का?
मैंने सुबह तुम्हारी बात सुन ली थी, मुझे बहुत बुरा लगा, तभी मैं तुमसे मिलने नहीं आई, और फिर शाम को बाहर चली गई थी, वहां अचानक मुझे सब कुछ याद आ गया। सब कुछ मतलब आखिरी बार हमारे साथ क्या हुआ था, आयु ने गर्दन झुकाकर कहा। फिर कुछ पल रुककर उसने आरफ की आंखों में देखकर कहा, आरफ तुम उसे छोड़ना मत, उसने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, हम उससे बदला लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आरफ ने बिना कुछ कहे उसकी बात पर हामी भरी। आरफ जो चाहता था वो उसे मिल गया था। आयु को भले ही कुछ याद ना आया हो, लेकिन जो उसे याद आना चाहिए था, यानी उसके आखिरी कुछ लम्हे, वो उसे याद आ चुके थे। अब आयु आरफ की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत बन गई थी, जो माहिरा से बदला लेने में उसका पूरा साथ देने के लिए तैयार थी। ओके जी, आज के लिए इतना ही, चलिए अगले पार्ट पर मिलते हैं, और पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, काफी सैड पार्ट्स चल रहे हैं अभी तो। होप यू स्टिल एंजॉयिंग स्टोरी।